इसलिए फरमाया अलम यालम अन अल्लाह यालम सिर्रहुम व नजवाहुम व अन अल्लाह अल्लामुल गुयूब। क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जानते हैं इनके भेदों को और इनकी सरगोशियों को, और ये कि अल्लाह तमाम गैब का जानने वाला। देखिए अंदाज, देखिए डांट का, अलम यालमु, क्या नहीं जानते, और यालमु में क्या छुपा हुआ है, इल्म छुपा हुआ है। इल्म निफाक के रंग खोल के सामने ले आता है। इल्म के बगैर नहीं पता चलता, क्योंकि इल्म रोशनी है, अंधेरे में नहीं फ़र्क पता चलता सांप और रेशम का। इल्म के चिराग जलते जाएंगे, निफाक के पोल खुलते जाएंगे। बहुत दिल से अपने लिए भी दुआ करें और सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई मामला ना हो। और अगर कोई कहीं ज़िंदगी में कोई अल्लाह से वादा किया, अल्लाह के नाम पे वादा किया, उसको याद कीजिए और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको मुझे उसको पूरा करने की तौफीक दे। इसी तरह अगर कभी कोई सुस्ती हो, नमाज में कमी बेशी कुछ भी, तो उसकी भी वजह आपको यहाँ समझ आ जाती है। और इस वाक्य से एक और बात पता चलती है कि नबी की दुआ कबूल होती है। अगर नबी दूसरे के लिए दुआ कर दे और बरकत दे दे अल्लाह, तो क्या नबी अपने लिए ये नहीं मांग सकते थे? या फिर एक बड़ा काम का नुक्ता लिखिए, नबी चाहते तो खुद अपने लिए भी दौलत मांग सकते थे, लेकिन उनको पता था कि दौलत के साथ अमूमन निफाक का कीड़ा आ जाता है। हर एक के साथ नहीं, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादा निफाक आया दौलतमंदों में, क्योंकि उसके तकाजे ही बड़े होते हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ ही बहुत होती हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि इंसान के पास जो है ना, उस पे खुश रहे, अपने आप को उतने में मुतमईन रखे। और आप में याद रखिए, इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह सुबहाना ताला कभी बंदे को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला बंदे के साथ कभी भी बुराई का मामला नहीं करता। और ये आलम या आलम के इजहार ताज्जुब, हैरत, मुनाफिकीन की असल बीमारी भी बता दी और ताज्जुब भी कर दिया। अल्लाह के नबी को 9 साल हो गए इनके बीच में रहते हुए, क्या ये मुनाफिक जो 9 सालों से नबी के जेरे तरबियत थे, अब इस्लाम के अमली तकाजों के मौके पे पीछे हट जाएंगे? आज पूरा जज़ीरतुल अरब इनकी गिरफ्त में। आप देखिए कि नबी सल्लम के आने से पहले मदीना गरीब बस्ती थी, किसी की तवज्जो भी नहीं उधर कभी गई, लेकिन ऐसे वक्त और ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अगर मुसलमानों के सामने ये चीज़ रखी, तो ये भी तो एक बताने की बात है। कोई एक दो दिन वाला बंदा हो तो बंदे को बात समझ आती है। 9 साल नबी सल्लम मदीना में रहे, तो यहाँ असल में अंदर दिलों के खोट खपट दूर किए जा रहे हैं। अपनी इसलाह करो, अपनी फिक्र करो। तुमने नबी के कितने मौजज़े देखे, तुमने हिजरत के मौके पर अल्लाह के रस्तों से दुश्मनों की नज़रों से बच के इसका आना देखा, लेकिन क्या तुम अल्लाह की इतनी कुदरतों को देखकर नहीं बदले? ना तुम्हारे अकीदे बदले, ना तुम्हारे दिल दिमाग से राब हुए, ना तुम्हारे अंदर किरदार मजबूत हुआ। तुमने अल्लाह की मदद के इतने वादे पूरे होते देखे, फिर तुम्हें अल्लाह के बजाय पैसा ही प्यारा है? तुम इस माल की मोहब्बत में निफाक पे आ रहे हो? और याद रखिए, क्योंकि अब आगे फिर बात थोड़ी सी बदल रही है यही, लेकिन यहाँ फिर लिख दूँ कि वो दौलत इंसान के लिए वबाल है जिसके साथ इंसान के दिल में निफाक आ जाए, जिससे ईमान की दौलत चली जाए। और अक्सर लोगों के ईमान में कमी होती ही दौलत की वजह से। पैसा, पैसे का लेन, पैसे का देन, पैसा पैसा। मैं सोचती हूँ जिनको इसकी असल पता है वो कहते हैं मुझसे इसको दूर ही रखो, क्योंकि ये इंसान को कभी झूठ बोलने पे माइल कर देता है, कभी फरेब देने पे माइल कर देता है। दिल की आवाज़ कुछ और होती है, ज़ुबान की आवाज़ कुछ और होने लगती है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसे ऐसे बचाए। अब यहाँ तक बात पूरी हुई, क्या खुद नहीं देते? चलिए, क्या उनका निफाक यहाँ रुक जाएगा कि खुद नहीं देते? नहीं, अब जब बंदा खुद नहीं करता ना, तो दूसरे को करता देख भी नहीं सकता। क्यों? अब थोड़ा सा अगली आयतों का समझ लीजिए खुलासा, कि जब बंदा खुद कोई नेकी करता है ना, तो दूसरों को भी वो नेकी करता देकर खुश होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि एक तो हम आहंगी जहनी रब, दूसरी बात है मेरा बोझ कुछ बटेगा, अकेली जो मैं सफाई कर रही थी तो मेरे साथ एक और करने लग गई, तो दो होंगे, ठीक है। और तीसरी बात है कि मकसद एक होता है तो मोहब्बत होती है। दूसरी सूरत क्या होती है? बंदा खुद नहीं करता तो आप दूसरे को करता देकर क्या सोचे? होना क्या चाहिए? चलो मैं नहीं कर रहा, कोई तो कर ले, पर मसला क्या है, मैंने नहीं किया, अब दूसरे ने किया तो मेरा ना करना खुल जाएगा। बात समझ गए? दूसरी बात यह है कि मैंने नहीं भी किया तो इनका काम तो चलता ही रह गया। और तीसरी बात है कि मेरे पीछे हटने के बावजूद ये तो अपने इस मकसद को पा लेंगे। तो लिहाजा फिर अब अगला दर्जा क्या होता है, जब बंदा खुद नेकी के किसी काम से पीछे रहता है तो फिर करने वालों पे तरह तरह के कमेंट्स देता है। वही कमेंट्स अब आप सुनेंगे आयत 79, अल्लज़ीन यलमज़ून अल-मुत्तवईन, वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तान करते हैं मुतवईन पे। मुतवईन कौन? दिल की खुशी से नेकी करने वाले। तोए बोवाइन तावन वकरहन, पीछे भी पढ़े हमने इसी सूरत में, पढ़ के आए अभी चंद दिन पहले। मुतवा कहते हैं वॉलंटियर को, फ्री विली काम करने वाला, जो दिल की खुशी से करे। और ये जो तत्वो होती है ना, ये नफिल इबादत को कहते हैं, क्योंकि वो करता ही वो ही है जिसने खुद खुशी से करने, वॉलंटियरली करने वालों को, यानी जो दिल की खुशी से नेकियां करते थे, माल लेकर आते थे, जान लगाते थे। तो ये पीछे रहने वाले अब उनके ऊपर ताने कसते हैं, मिनल मोमिनीन फिस सदकात, अहले ईमान पर इनके सदकात के बारे में। ये क्या बात हुई? चूंकि आयते तबुक के ही टेक्स्ट में है, अल्लाह के नबी ने तबुक की मुहिम के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरगीब दी, तो मुसलमानों की तरफ से इसार और इखलास के अजीबोगरीब मज़ाहर देखने में आए। अबू अकील नामी एक अंसारी सहाबी थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, क्या करा, शुक्र करते हैं ही नहीं तो दें कि अल्लाह ने हमें क्या दिया जो हम दें, लो हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, नहीं तो बस अस्तग़फ़ार। रात भर एक यहूदी के यहाँ मजदूरी की, एक डोल पानी के बदले एक खजूर लेते, और सारी रात कुएं से पानी निकाल निकाल कर इसके बाग को सैराब करते रहे। सुबह इन्हें मजदूरी के तौर पर जो खजूरें मिली, कितनी मिली होंगी, एक मुट्ठी में, उसमें से कुछ तो अपने बीवी बच्चों को दी खाने के लिए और बाकी लाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी के खलूस और इखलास और हुस्ने नीयत से इतने खुश हुए, फरमाया ये खजूरें सब मालो असबाब पर भारी हैं, चुनाचे आपकी हिदायत के मुताबिक फिर इन्हें सामान के पूरे ढेर के ऊपर फैला दिया गया। अब ये तो एक उनकी कदरदानी की अल्लाह के नबी ने। तो मुनाफिकीन थे कौन? वही जो पिछली 3 आयतों में गुजर गए। उन्होंने अबू अकील का मजाक उड़ाया, फिक्रे कसे, लो जी क्या कहने, कितनी बड़ी कुर्बानी है, इन खजूरों के बगैर ये मुहिम तो भला चलनी थी, और देखो खजूरें मुट्ठी भर लेकर चले हैं ये रोम को फतह करने वगैरह वगैरह। फरमाए वल्लज़ीन अला यजिदून इल्ला जुहदहुम, और जिनके पास अपनी मेहनत और मशक्क़त के सिवा कुछ है ही नहीं, जिनके पास पैसा रुपया नहीं है, डॉलर पाउंड नहीं है, हाँ मेहनत कर सकते हैं, ये उनकी मेहनत भरी कमाई और उनकी उस डोनेशन का मजाक करते हैं। सखीरुल्लाह मिन्हुम, अल्लाह भी इनका मजाक कर रहा है। ये मुहावरा है, जो फेल होता है ना उसके मुकाबले में वही फेल लाया जाता है, चूँकि फ़यसखरून तो का सखीर अल्लाह, ये वही बात है जो पीछे युखादिउनल्लाह वहुवा खादियुहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये भी एक अजीब बात है, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जब खुद नेकी से पीछे हो तो दूसरे को भी रोके? क्योंकि जब हम सब एक जैसे होंगे तो कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। आप देखिए एक जगह एक महफिल में सब एक जैसे होते हैं ना तो सब खुश रहते हैं, कोई एक हम जैसा पहुंच जाए वहाँ मौलवी तो सारे ही परेशान होने लगते हैं। बस यही बात है इधर, वो कहते थे ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिसको कहते हैं अंधों में काना राजा, और ये और वो इस तरह की बातें। अल्लाह सुबहान तआला यहाँ इसी बात की बात करके फरमाते हैं कि इस तरह निफाक बढ़ता है। पीछे आपने देखा कि निफाक पैदा कैसे हुआ, और आप बताया कि निफाक वाला ना सिर्फ ये कि खुद नेकी से दूर रहता है, दूसरे को भी करते हुए रोकता है। अच्छा, जो कम दिया उनको तो ये कह दिया, और कोई ज़्यादा ले आता जैसे उस्मान गनी, अब्दुलरहमान बिन औफ, उमर फारूक, अबू बकर, बड़ी बड़ी रकमें लेकर आए थे। सिर्फ हज़रत उस्मान के सामान से कहते हैं कि 10 लोगों का पूरा काफिला तैयार हो सकता था, इतना सामान था उनका। तो उस पे क्या कहते थे, ऐशो मारते हैं, इनको बड़ा शौक है, ये दिखावे के लिए देते हैं, ये रियाकार हैं, ये इसलिए फटाफट आगे आके अपना नाम दिखाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि इस दफ़ा भी इन्होंने ही आगे आके दिया, यानी थोड़े देने वालों से भी बातें और ज़्यादा देने वालों को भी बातें। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की बातें करते हैं। और एक तो अबू वकील का नाम आता है ना इसमें, अबू मसूद कहते हैं जब हमें सदका करने का हुक्म होता है तो हम मेहनत मजदूरी करके अपने कमरों पर बोझ उठा उठा कर कुछ हासिल करते थे जिसको सदके में पेश कर देते थे। बुखारी की रिवायत है 673 नंबर की। और तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि अल्लाह के नबी ने रग़बत दिलाई सदके की तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4,000 दिरहम पेश किए, आसिम बिन अदी ने 100 वसक खजूरें, वसक होता है एक बड़ा सा ट्रे, बड़े बड़े वो जैसे सीनियाँ नहीं होती, 100 सीनियाँ खजूरों की पेश की। इस पर मुनाफिकीन ने तंज किया, अजी कुछ नहीं ये तो रियाकारी है। और अबू अकील जब ये सब कुछ लेकर आए तो कहने लगे लो जी इस मस्कीन के सदक़े से तो भला अल्लाह बेनियाज नहीं था, यानी क्या इतनी सी चीज़ से अल्लाह ने को फ़ायदा होना था। तो याद रखिए कि मुनाफिक की तबीयत बिगड़ी होती है, वो ज़्यादा देने वालों को रियाकार समझते हैं, कम देने वालों को बेकार समझते हैं, और इखलास चूँकि अपने पास कोई नहीं तो दूसरों के दिए की भी कोई कदर नहीं समझ आती। कह लीजिए कि मुनाफिक वही पीछे बात हुई मुसलसल अजाब में होता है, जलने कुड़ने का अजाब ही रहता है, इसका नसीब भी जलना कुड़ना होता है। एक तरफ वो मुसलमानों की हालत को देख के खुश हो रहा होता है और दूसरी तरफ देने वालों को देख कर कुड़ता है। एक देने वाला खुशी पा रहा है और ये उसको देता देकर जल कुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की तस्करे यहाँ अल्लाह ताला ने फकर के मुझे आपको अपने दामन में झांकने की बात कर दी। अब आगे ख़ास तौर पे तो आज जो अब्दुल्ला बिन उबई के लिए, लेकिन एक जनरल बात है इसका भी थोड़ा सा खुलासा समझ लीजिए। हम सब कहते हैं कि नफ़्से सल्लम की शिफात नसीब हो हमें क़्यामत के दिन। क़्यामत के दिन जो शिफात है ना वो दुनिया में आपकी दुआ है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, हर मौके पे उसने इस्लाम को तकलीफ़ दी, हत्ता के नफ़्से सल्लम पे ज़ाती बातें भी कसी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उस मौके पे कुछ ये आयतें और कुछ सूरत के आखिरी हिस्से में 11वें पारे में पढ़ेंगे, ज़रा सा इन आयतों का खुलासा कर लें फिर बात करेंगे। आयत 80 इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, ए नबी आप इनके लिए इस्तग़फार करें या इनके लिए इस्तग़फार ना करें। और आप देखिए लहुम है ना दोनों जगह तो जमा है तो सिर्फ फिर एक तो नहीं होगा ना, वो तो फिर होता है इस्तग़फिर लहू वला तस्तग़फिर लहू। तो हम से मुराद ये ऊपर सारे मुनाफिक जिनका तस्करा अभी तक हो गया। इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन, अगर आप इनकी बख्शिश मांगें या आप इनके लिए दुआ मग़फ़रत करें 70 बार, फलें यग़फिर अल्लाहु लहुम, तब भी अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। क्यों? आप ज़रा सा सूरत निसा आयत 145 को याद कर लें, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफली मिनन्नार, मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। उसके बाद अगर कुरान में मुनाफिकीन के हक में सख्त तरीन आयत है तो वो यही है कि नबी की दुआ भी इनको काम ना देगी। वजह ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू, ये इस वजह से कि इन लोगों ने कुफर किया बिल्लाही अल्लाह के साथ, व रसूल ही और उसके रसूल के साथ, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। तीन जुर्म है कफरू बिल्लाह व रसूल ही और तीसरी बात कौमल फासिकीन। क्या पता चला इस एक आयत से? यहाँ बात इतनी करके छोड़ दी गई है लेकिन बात आगे भी आएगी इंशाल्लाह इस के बारे में। अभी सिर्फ अगर इस टेक्स्ट के मुताबिक ही ले लेना कि मुनाफिकों को तो नबी की दुआ भी नहीं लगती तो बात पूरी हो जाती है। नबी की दुआ लेने के लिए कुछ किरदार तो सामने लाना पड़ता है। अल्लाह के नबी ये कोई बात छोटी थोड़ी है, आपकी दुआ है कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। दिल में निफाक हो, ज़ुबान पे ताने हों, आँखों में इशारे हों और दुआ नबी की हो नहीं लगेगी। और ये जो 70 का लफ्ज़ है ना ये मुबालगे का कसरत के लिए। अल्लाह का ये फ़ैसला इतना सख्त क्यों है? क्योंकि मुनाफिक अल्लाह के दुश्मन होते हैं, अल्लाह के दीन की बुनियादें ढाने के काम करते हैं, कुफर करे और अल्लाह के रास्ते में लोगों को आते हुए इस तरह की कड़वी कुसैली बातें कोई करे तो अल्लाह फिर उसको क्यों बख्शे? सवाल पैदा होता है क्यों? اللہ کا اتنا سخت فیصلہ کیوں ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ منافق کی اصلاح کی اب کوئی امید نہیں رہتی، دوسری بات ہے منافق کا دل بگڑ چکا ہوتا ہے، تیسری بات ہے کہ منافق گمراہی میں حد سے گزر چکا ہوتا ہے، واپسی کی امید ہی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو تو ختم کریں، جن مالٹوں کا رس نکال لیا گیا ہو ان کے چھلکوں کو کیا کرنا، پھینک دو، بس یہی کام ہے منافق کے ساتھ بھی۔ چلیے اب اس کے اوپر جو باقی باتیں تو ہوں گی آگے، لیکن اب یہاں سے ایک ذرا سا خلاصہ سمجھ لیجئے، آیت نمبر 81 سے 89 جو آیتیں ہم پڑھنے لگے، یہ ساری کی ساری آیتیں اب دوبارہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگوں کی کہانی ہے۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے آپ کو ایسے احساس ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں غور کریں، سوچیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو انسان کو ضروری اپنے اندر جھانکنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آیت 81، فریحل مخلفون، خوشیاں منائی پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں نے۔ دو لفظ ہیں، ذرا سا غور سے دیکھیے گا، پہلا لفظ ہے فرحا، وہ ایک خوش ہوا، فرح یفرح، فرحت فرحا، اچھی ہو تو بہت اچھا اور برے رنگ میں ہو تو شیخیاں بگاڑنا، پیچھے بھی گزر چکی ہے یہ بات، یعنی خوش ہوئے، خوشیاں منائی کنہوں نے؟ مخلفون، یہ لفظ سمجھنے والا ہے، کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ دو لفظ ہوتے ہیں، لکھیے پیچھے رہنے والے، لکھیے ذرا اپنے نوٹس میں، اور دوسرا ہے پیچھے چھوڑے جانے والے۔ فرق کیا ہے؟ پہلا خود رہ گیا، دوسرے کو خود چھوڑا گیا، یہاں کون سا ہے؟ جن کو چھوڑ دیا، تم بیٹھے رہے، اسٹے ہیئر، ڈونٹ فالو می، تم نہیں جا سکتے۔ تو جب بندہ دل کے نفاق کے ساتھ کچھ عرصہ اللہ کے رستوں میں نکلتا ہے نا، تو پھر اللہ آخر میں کہتا ہے کہ آپ تشریف رکھیے ادھر، یہ بات ہے۔ ادھر خوش رہے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، بھی مقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پہ، کس سے پیچھے رہ گئے؟ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد۔ یہاں خلاف سے مراد وہ مخالفت نہیں ہے، یعنی بیہائنڈ کے معنوں میں، کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، اور پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں۔ اچھا، جب خود پیچھے رہے، پہلی بات دیکھیے، پیچھے رہنا محرومی تھی کہ کامیابی تھی؟ محرومی تھی نا، تو محرومی پہ خوش رہے۔ اس جملے کو ذرا سا خلاف اور رسول اللہ کی جگہ دنیا کے دو چار کاموں پہ لکھیے، کسی کا بچہ میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہو سکا تو وہ خوشیاں مناتا، اچھے گھر میں رشتہ ہوتے ہوتے چھٹ گیا، خوشیاں منائیں گے؟ $1,00,000 ملتے ملتے رہ گیا، دنیا کی دولت ہاتھ سے جائے تو بندہ روئے، اور دین کی دولت ہاتھ سے جائے تو بندہ خوشیاں منائے۔ اور خوشی کیا تھی؟ جان چھٹی، اب چلے گئے، آنا ہے نہیں کسی نے واپس، 15 دن کا سفر جانے کے، اگر آئے بھی تو 15 دن جانے اور آنے کے، 1 مہینہ تو جان چھٹی، پھر دیکھیں جب آئیں گے پوچھ لیں گے ہم سے۔ یہ کیفیت تھی، منافق کی علامت سمجھ آ رہی ہے، نیکی کے مواقع کے چھیننے سے خوش ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی کال ہی نہ آئے نیکی کی، کچھ نیکی کا کام نہ ملے، کوئی نیا پروجیکٹ سامنے نہ آئے، کوئی جمع خرچ نہ ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیے تو سچے مومن ہیں نا، وہ تاڑتے رہتے ہیں، کوئی نیکی کا موقع نہیں آ رہا، ہائے یہ اچھے اچھے دن گزر رہے ہیں، کوئی ہم نیکی کر نہیں پا رہے، اچھا کوئی نئی نیکی، کوئی موقع، اور دیکھے تو خوش ہو جاتے ہیں وہ۔ ان کو واقعی صورت عذاب کی وہ آیتیں کہ ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی نئی جنگ ہوتی تھی، آج کی جنگیں نہیں ہیں، آج ہمارے دنیا کے جہاد ہیں، کوششیں ہیں، چیزیں ہیں۔ جیسے ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ بعض دفعہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں ہم لوگ اپنا کوئی نیا پروجیکٹ بھیجتے ہیں تو کیا بھیجنا چاہیے، کیونکہ ایک ویب سائٹ بھی ان کی ریوارڈ کی، تو اس کو دیکھ کے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے، اگر آپ نے نیکی میں ڈالنے سے کوئی فرض نہیں، کوئی لازم نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹو جسٹ انفارم دیم۔ جیسے ٹی وی میں سارا دن आपको एडवर्टाइजमेंट आता है तो कोई कहता थोड़ी कि ज़रूर हमसे लें, बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है ले लीजिए, लेने ले लें। तो फ़ायदा क्या होता है कि जिसका दिल होता है, जिसको मौका मिलता है, जिसके लिए सहूलत है, वो उससे फ़ायदा उठाता है, हर्ज क्या। कुछ लोग इसको भी बुरा मानते हैं, लो जी अब हम चंदा मांगे अपने ग्रुप्स में। भाई आप चंदा नहीं मांग रहे, आप लोगों को नेकी का मौका दे रहे हैं। अच्छा अब वो मैसेज मैसेज पढ़ के हर एक की अपनी सोच, कोई दुआ दे देता है, कोई खुश हो जाता है, कोई कुछ कर सकता है तो कुछ कर भी देता होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, अब ये भी होने लगा, अच्छा अब ये नया काम, नई जगह, नए फुरान, ऐसे भी लोग होते हैं। तो दुआ कीजिए कि हम नेकियां करने वाले ना भी बने तो नेकी को देखकर खुश हों, और नेकियों से पीछे रहने पे खुश होना ये हलाकत की अलामत है। वजह पीछे यही कहीं, युजाहिदु बिअमवालिहिम वा अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जान और माल अल्लाह के रास्ते में लगाना बड़ी मुश्किल। कह दो नहीं ये प्रोग्राम कैंसिल, सारे जी अगले प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हमने, क्या आप ईद मनाएं खुशी से? कुछ इस पे खुशियां मनाएंगे, कुछ रोने लग जाएंगे। क्या अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया नेकी करने से? क्या अब हम ईद के दिन अल्लाह के लिए कोई घंटे दो नहीं लगा सकते? क्या हम अल्लाह के दीन की तैयारियां नहीं कर सकते? कुछ खुश होंगे, कुछ परेशान होंगे, हर एक अपने दिल को जानता है। और फिर हिम्मत तोड़ने वाले जुमले क्या बोलते थे, वकालु ला तनफिरू फिल हर्री, और दूसरों से भी कहते देख लो इस गर्मी में मत निकलो, हम तो बैठे हैं एसी लगा के घर में मजे से, ये तुम पागलों गर्मी में चले गए हो, ना निकले ना निकलने देंगे, खुद रुके दूसरों को भी रोकते हैं। हम कितने अक्लमंद थे, हम अल्लाह के नबी से रुख्सतें लेकर आ गए, जरा तुम भी होश के ना हो, लो इधर आओ, गर्मी लग जाएगी, लू लगेगी, और तुम्हें ठंडे शरबत पिलाते हैं घर बैठो। कुछ तो कहेंगे हाय इनसे ज़्यादा कोई हमारा मुखलस नहीं, और नबी सल्लम से ज़्यादा कोई हमारा दुश्मन नहीं, नाउज़ु बिल्ला। और कुछ ये जज्बाती लोग जो आपको झूठी उम्मीदें दिला देते हैं, कहा नहीं, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ए नबी इनसे कह दीजिए जहन्नुम की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। लव कानु यफ़क्कहून, काश इन लोगों को कुछ फहम तो होता, आज की गर्मी से बच जाएंगे, जहन्नुम की गर्मी से कैसे बचेंगे? तो ऐसी हरकतों पे क्या करें, फल यदहकु कलीलम वल यबकु कसीरा, तो इन्हें चाहिए कि हंसें कम, फन कम मनाएं, बहुत हंसी मजाक की महफिलें कम सजाएं, रौनक मेले की महफिलों में कम जाएं, हंसी ठट्ठे मजाक और फन एंड फ्रॉलिक में कम रहें, और वल यबकु कसीरा, और रोएं ज़्यादा। किस बात पे? जुजाम बीमा कानू यक्सिबुन, बदला इस कमाई का जो उन्होंने की, यानी अपने करतूतों पे रोया ज़्यादा करें। नदामत के आंसू हों कहीं, कहीं हसरत के आंसू हों, कहीं अपनी कोई कोताही याद आ जाए तो रोना आ जाए, कभी इस्लाम की हालत ज़ार देख कर रोना आ जाए, कभी अपने मुसलमानों की हालत पे रोएं, कभी अपने मुल्क की हालत पे रोएं, कभी अपनी यूथ को देख कर रोएं, कभी अपनी बेटियों के कपड़े देख कर रोएं, कभी अपने मर्दों की दीन से बड़ी हुई बातें सुनकर रोएं। मोमिन के लिए रोने के बड़े मौके हैं कि अल्लाह बन क्या गया, मैं किन अजनबियों में ठहर गई, अल्लाह ये मेरा किन से वास्ता पड़ गया, ये मेरे इर्द गिर्द वाले कौन है। कभी दोस्तों पे रोएं, कभी रिश्तेदारों पे रोएं, कभी शादियों में बैठ कर रोएं, चीखें रोएं, क्या क्या हुआ, कहना मैं इस हालत पे रो रही हूँ, जजाम बीमा कानू यक्सीबुन, अल्लाह की कसम आपको अगली दफ़ा कोई नहीं बुलाएगा वहाँ, या वो वैसा नहीं काम करेंगे या आपको बुलाएंगे नहीं। दर्द आप अपने अंदर रख के रोएं, फिर देखिए आपके रोने में भी अल्लाह कितनी खैर डाल देता है, और वहाँ हम हंस हंस के आते हैं, चीयर्स स्माइल, खुशी का मौका, और खुश है कोई, खुश नहीं है, मैं नहीं मानती अल्लाह को ना खुश करके कोई खुश हो, कभी नहीं खुश हो सकता। जिन बातों पे नबी रोए आज हम उन पे हंसते हैं, जिन चीज़ों से नबी यूं गुजर जाते थे कि कानों में उंगलियां डाल देते थे, हम वहाँ बैठ के इंजॉय करके आते हैं। नाफे एक गुलाम थे हजरत इब्ने उमर के, तो एक मौके पे इब्ने उमर के साथ सफर में थे, तो दूर से बांसुरी की आवाज़ आई जिसको आज के दौर में कोई सास भी नहीं कहता, तो हजरत इब्ने उमर ने अपने कानों में उंगलियां डाली और नाफे से कहा कि जब आवाज़ आनी बंद होगी तो मुझे बताना। फिर उन्होंने इशारा किया कि अब आवाज़ नहीं आ रही, तो इन्होंने कानों से उंगलियां निकाली, फिर रुके और कहा अल्लाह की कसम मैं एक दफ़ा नबी सल्लम के साथ गुजरा, और उन्होंने बिल्कुल वही किया जो आज मैंने किया, कि नबी तो अपने कानों में उंगलियां दे लेता था। कभी अपने फेस एक्शन, कभी फीचर बॉडी लैंग्वेज से लोगों को दिखाइए कि ये क्या खुराफात है, फिर पता चलेगा फल यद हुकू कलीलम वल यबकू कसीरा क्या। याद रखिए ये बहुत कड़वी जाते हैं, उसको कड़वी लगती हैं जिनका भी इस पे अमल नहीं है, और उसको इससे मीठी आयतें कोई नहीं लगती जो इसके ऊपर अमल करने को तड़पता। दो आयतों में अल्लाह ताला ने वो किरदार दिखा दिया कि जो खुद भी पीछे दीन से नेकी से। और ये आयतें कब नाजिल हो रही हैं, क्या हालात हैं, तबूक के लिए आप जा चुके हैं और पीछे बैठे हुए लोग हैं। अगली आयतों को भी देखें, फिर इकट्ठी इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे।